نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تسلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور اس کے بعد زندگی گزارنے کے وہ طریقے دیے کہ جس پہ عمل کر کے ہم نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. آج ہم انشاء اللہ تعالیٰ اسلامی مہینے کا بہت معروف مہینہ جو ترتیب کے اعتبار سے آٹھواں مہینہ بنتا ہے شعبان, اس پہ بات کریں گے کہ شعبان کے مہینے میں کوئی خاص بات ہوئی, کوئی خاص واقعات, کوئی اس کی عبادت, کوئی اس کے ناطے سے کوئی بات ہو, اور یہ بات کرنا اس سوچ کی غمازی کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر دن ہر مہینہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے گزارنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری بات ہے. اسلام جو ہے نا, یہ ایک مکمل طریقہ زندگی ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اسلام میں صرف عبادت کرنے کے طریقے اور نماز روزے کی باتیں بتائی گئیں, حالانکہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہر بات بتائی, کب کرو, کیا کرو, کیسے کرو. تو شعبان کا مہینہ جو ہے, یہ ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو اسلامی کیلنڈر کا آٹھواں مہینہ بنتا ہے, اور اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی بہت بڑھ جاتی ہے کہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے, اور شعبان کے مہینے سے اگر یہ سوچ بن جائے کہ اب آنے والے دنوں میں ہم ایک بہت بابرکت مہینے سے گزرنے والے ہیں, تو ذہن سازی ہو جاتی ہے اور انسان کچھ کام ایسے کر لیتا ہے کہ جس کے بعد پھر وہ رمضان کو بہت اچھی طرح گزارتا ہے. تو شعبان کے بارے میں جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے چیز ملتی ہے, اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. ایسی روایات ملتی ہیں. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے, اسامہ بن زید نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ میں آپ کو رمضان کے علاوہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتا ہوا دیکھتا ہوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے کہ صحابہ کرام کتنی باریکی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے تھے اور پھر فوراً اس پہ عمل بھی کر لیتے تھے اور پوچھ بھی لیتے تھے ایسی بات. تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں اتنے روزے رکھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ لوگ رجب اور رمضان کے درمیانی مہینے سے غافل ہیں, یعنی شعبان کے مہینے سے پہلے رجب کا مہینہ ہوتا ہے اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہوتا ہے, تو لوگ اس مہینے سے غافل ہیں جبکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. یعنی ہمیں اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ ہمارے سال بھر کے جو عمل, گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز ہوتے ہیں, اس کا جو اینول اکاؤنٹ ہوتا ہے, جو سالانہ حساب کتاب ہوتا ہے, وہ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے. اور اسی وجہ سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا چاہتے تھے تاکہ جب ان کا نامہ اعمال اللہ کے سامنے جا کے کھلے تو وہ روزے سے ہوں اور اللہ تعالیٰ کو آپ پر رحم آ جائے. اسی طرح سے ہی بخاری کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو رمضان کے علاوہ سوائے شعبان کے کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو شعبان کی جو چیز ہمیں دکھی وہ کیا ہے کہ کثرت سے روزے رکھنا چاہیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ کس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے, آپ نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں. کیوں؟ کہ رمضان کی عظمت کے لیے. کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صدقہ کس مہینے میں زیادہ کرنا چاہیے, تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں. تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ इस मौसम में इसमें रोज़े रखे जाएं। दूसरी चीज़ जो इसमें हम कर सकते हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, इसमें एक चीज़ आती है और वो क्या है कि अगर किसी वजह से और बीमारी के दिनों की वजह से पिछले साल के जो छुटे हुए रोज़े हैं उनको मेकअप कर लें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे जो हैज़ के छुटे हुए रोज़े होते थे हम अगले साल के रमज़ान से पहले यानी शाबान के महीने में उनको पूरा कर लेते थे। तो गोया कि आप ये कह लें कि डेड लाइन करीब आ जाती है, एक साल की मोहलत भी अगर पूरी नहीं की यानी एक साल का फ़ायदा नहीं उठा सके तो शाबान के महीने में वैसे भी रोज़ों का सवाब है। तो जिसके भी किसी वजह से कोई फ़र्ज़ रोज़ा अगर छूटा था तो वह इन दिनों में उन रोज़ों को रखे, इंशाल्लाह फ़र्ज़ का भी अजर होगा और नफिल का भी अजर होगा, दोनों ही चीज़ें उसके सामने होंगी जिससे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से ज़्यादा अजर मिल जाएगा। फिर इसी तरह शाबान के बारे में जो चीज़ हमें मिलती है वो क्या है कि इसमें ही इंसान का जहन इस किस्म का हो जाना चाहिए कि वो रमज़ान के लिए तैयारी करे। अभी से जहनी तौर पे अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि अल्लाह नेकियों का मौसम बहार यानी रमज़ान आने वाला है तो मुझे उसके लिए अभी से कुछ ना कुछ काम करने की तौफीक दे, और इस तरह से फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को दूसरी चीज़ों से पाक करता जाए जिससे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ फरमाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें कि शाबान के महीने में जो कोई काम हुए यानी जो एक ख़ास मौके हुए, सीरत को अगर हम देखें और इसी तरह तारीख़ इंसानी को देखें तो कुछ ख़ास काम जो शाबान के महीने में हुए वो आपके सामने रखूँगी ताकि हम पहले ये अच्छी तरह समझ जाएं कि इस महीने को अल्लाह के नबी की सुन्नतों और अहदीस और कुरान पाक की आयात की रोशनी में हम कैसे देखेंगे। फिर इंशाल्लाह एंड पे हम अपने आज के इस टॉपिक में तकरीबन 9 किस्म की मिसकॉन्सेप्शन देखेंगे जो लोगों को शाबान की वजह से हैं। यानी शाबान उन महीनों में से एक महीना है जिसके बारे में आज मुसलमानों में बहुत सारी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। जो गलत फहमियाँ हैं, बदनीयती नहीं कह सकते, किसी की नीयत का ख़राब होना या जानबूझ के गलत काम करना नहीं, लेकिन जैसे बहुत सारी चीज़ों में लोग मिसकॉन्सेप्ट हो जाते हैं उसी में से ये हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि क्या चीज़ें शाबान के महीने में हुई थी, क्योंकि जब असल पता चल जाता है तो फिर उसके बाद दूसरी चीज़ को देखना भी आसान हो जाता है। तो तारीखी वाक़यात में किबला जो तब्दील हुआ था, मक्का में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, फिर मदीना में आप आए तो बैतुल मक़दस की तरफ कुछ दिन मुँह पड़ा किया लेकिन दोबारा किबले की तरफ मुँह हुआ। तो किबले की तब्दीली का जो हुक्म था ये 15 शाबान को हुआ था, यानी शाबान की इम्पोर्टेंस में या इसके अहम वाक़यात में किबले की तब्दीली की बात है। फिर इसी तरह रमज़ान का महीना जो है वो 2 हिजरी में 25 शाबान को फ़र्ज़ हुआ, यानी आप कह सकते हैं कि फ़र्ज़ रोज़ों का जो हुक्म है ये भी शाबान की 25 तारीख को हुए जो कि हजरत करने के दूसरे साल पे। फिर इसी तरह हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह भी शाबान के महीने में हुआ था 3 हिजरी में। फिर उसके बाद हज़रत हफ्सा की डेथ भी जो थी वो शाबान के महीने में हुई 45 आफ्टर हिजरा, यानी इनकी डेथ हुई थी। इसके बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंड सन थे, आपके नवासे थे, वो भी शाबान की 5 तारीख को हिजरत के चौथे साल पैदा हुए। फिर इसी तरह एक बहुत मारूफ जंग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हुई जिसको बनु मुस्तलक कहते हैं, उस जंग के दौरान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हार गुम गया था, उसको ढूंढने के दौरान ही नमाज का जब वक्त हुआ तो लोगों का यानी नमाज का वक्त हुआ लेकिन पानी नहीं था तो तयम्मुम की आयतें नाजिल हुई। ये भी जो था शाबान ही का महीना था और 5वां साल था नबूवत का। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी उम्मे कुलसूम जो थी वो भी शाबान ही में फौत हुई 9 हिजरी में। अब आप देखिए कि ये सारी चीज़ें तो हमने देखी, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ कुरान और सुन्नत से नहीं मिलती कि जिसको सामने रखते हुए शाबान के महीने में कोई ख़ास काम किया जाए या शाबान के महीने को इस तरीके से मनाया जाए कि इसको बाज़ दफ़ा लोग मुर्दों की ईद का महीना कह देते हैं, बाज़ लोग शबे बिरात के नाम पे कुछ बातें इस महीने के साथ मंसूब करते हैं, कुछ इस महीने के अंदर काम करते हैं। तो अब हम پوائنٹس میں دیکھیں گے کہ عموماً شعبان کے مہینے کے بارے میں لوگوں کو جو غلط فہمی ہے وہ کیا ہے. سب سے بڑی اور معروف, جس کو یہ بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے مشہور غلط فہمی کیا ہے, کہ 15 شعبان کی جو رات ہے اس کو عبادت کرنا ہے. خاص طور پہ لوگ 15 شعبان کی رات کو, جس کو ہمارے انڈو پاک کلچر میں شب برات کہا جاتا ہے, شب برات منانے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں. اور اس کے لیے بہت ساری روایات بھی آپ کو اخباروں میں آرٹیکلس دکھیں گے, اسپیشل ایڈیشنس ہوتے ہیں. مثلا اس میں کچھ روایتیں اس قسم کی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک رات اتنی لمبی نماز پڑھی, پھر سجدہ کیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں سمجھی کہ آپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, پھر آپ سجدے میں پڑھ رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک, طویل آیت دعا ہے. پھر اس کے بعد آپ, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ, میں تو سمجھی کہ آپ کا انتقال ہو گیا. تو اس پہ اللہ کے نبی نے کہا نہیں کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جس کی عبادت کا بہت اجر ہے. پھر بعض روایتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کراتے ہیں. پھر اسی طرح ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جو 100 نفل پڑھ لے اس کی طرف کتنے فرشتے آتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں. یعنی اس طرح کی فضائل کی بھری ہوئی روایات پیش کی جاتی ہیں, لیکن اگر ہم ان ساری روایات کو کھول کے دیکھیں تو ان میں سے اکثر روایت جو ہیں وہ موضوع ہیں. موضوع روایت کیوں, کون سی ہوتی ہیں؟ فیبریکیٹڈ, یعنی خود سے کچھ چیزیں دین میں شامل کر دی گئیں. آپ حیران ہوں گے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے کہ جب آج کے دور میں اس کو اس طرح آپ سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ نہ سمجھی میں خود ہی قرآن کی بات, حدیث کی بات اپنے پاس سے کر دیتے ہیں. ہاں ہاں ایسا ہے, کہاں یہ نہیں پتہ, سنی سنائی بات ہے, کسی نے یہ کہا, سنا تھا وہاں تھا. اسی طرح ہمارے ہسٹری میں ایک ایسا دور گزرا ہے کہ جب خاص طور پہ اسلام جو تھا کوفہ میں آیا تھا, اور کوفہ کے لوگوں کا آپس میں کچھ اس قسم کا معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جگہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف جب انکلائن ہوئے تو کچھ اس طرح کے سیاسی حالات ہو گئے کہ ایک شخص تھا, اس نے بستر مرگ پہ اس بات کا اعلان کیا تھا کہ میں آج اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے کئی ہزار یا لاکھ کے قریب حدیثیں, کہتا ہے کہ میں نے خود گھڑ کے تو میں نے حدیث کے نام پہ کتابوں میں شامل کی. اب آپ کہیں گے اچھا پھر اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیثیں صحیح نہیں ہوتی, یا نعوذ باللہ اس میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے غلط ہے ٹھیک ہے تو ہم نہ مانیں. نہیں, جیسے اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھانٹنے والے لوگ بھی بھیج دیے. محدثین نے اس کام پہ اتنی بات کی, آج بھی ایون نان مسلم جو گئے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ کا ریسرچ ورک ہوا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ ہوا ہے. کسی انسان کی باتوں کو اتنی امپورٹنس دنیا میں نہیں دی گئی جتنی آپ کو دی گئی ہے. تو اس وقت ہر چیز کلین اینڈ کلیئر ہے, لیکن ہمارے لیے جو بات اس میں سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو خاص طور پہ شب برات کے طور پر منانا, یہ چیز قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے. عموماً یہاں ایک غلط فہمی ہے, اور وہ کہاں ہے؟ سورۃ دخان کی بالکل آیت نمبر 3 جو شروع میں ہی آتی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرن من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ ہو السمیع العلیم. اس کا ترجمہ ہے, بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا اور بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں. اس میں ہر اہم کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے حکمت کے ساتھ, اور وہ کام ہماری طرف سے ہوتا ہے اور ہم ہی اس کو بھیجنے والے ہیں. رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے, بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے. یہ جو چند آیات ہیں, بعض لوگ ان آیات کو 15 شعبان کے ساتھ جوڑ کر یہ تصور لے آتے ہیں کہ یہ رات جو ہے یہ عبادت کی رات ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ مسکنسیپشن ہے, کیونکہ اس جگہ بھی اور اسی طرح سورۃ القدر میں ان انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس کے اندر پھر اسی طرح سورۃ بقرہ میں رمضان کے ناطے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ جو آیتیں 15 شعبان کی سوچ سے پڑھی جاتی ہیں, یہ اصل میں رمضان کی آخری راتوں کی طرف بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے واضح ہے, قرآن میں اس کی کثرت سے چیز ملتی ہے کہ قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا تھا. کھل کے اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ میں آتا ہے دوسرے پارے کے چوتھے شاہ رکوع میں، کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی تھی غار حرا میں، وہ رمضان کے مہینے میں آئی تھی، اور آپ نے اپنی زندگی میں بھی اس بات کا حکم دیا. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو دیکھا کہ دو شخص جھگڑ پڑے، لڑائی ہو گئی، ان میں صلح صلائی کرانے میں آپ نے فرمایا کہ میں جب باہر آیا تھا تو مجھے لیلۃ القدر بتائی گئی تھی کہ کون سی ہے، یعنی جس ایک رات کی عبادت 50,000 راتوں سے بہتر ہے، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھے بھلوا دی گئی، لہٰذا اب اس کو تم 21, 23, 25 سے لے کے 29 تک کی جو تاک راتیں اس میں ڈھونڈو. اسی لیے آپ دیکھیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ان راتوں میں عبادت کا حکم ہے کہ ان میں سے کوئی ایک رات ہی جس میں لیلۃ القدر ہے اور جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور جس کی رات، ایک رات کی عبادت کئی ہزار کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو یہ چیز جو ہے درست نہیں ہے، اسی لیے پھر آپ نے اسے منع کیا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس ایک رات کو پانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، یعنی آپ ایون اور آڈ دونوں نمبرز کی، تاک اور جب، دونوں راتوں کو عبادت کرتے تھے. تو یہاں پھر غلط فہمی کیا ہوئی کہ فیہ یفرق کل عمر حکیم جو ہے اس کو لوگوں نے شعبان کے ساتھ لیا، حالانکہ یہ شوال، یہ لیلۃ القدر کا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کا ایک معنی جو ہوتا ہے وہ تقدیر بھی ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قسمت کے فیصلے جو ہیں یہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. ہمارے کلچر میں یہ بات بڑی معروف ہے کہ اس راز پتے لگتے بھی ہیں اور جھڑتے بھی ہیں، اور جنہوں نے مرنا ہوتا ہے ان کے پتے اتر جاتے ہیں، اور جن کے، جنہوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے وہ لگ جاتے ہیں. لیکن آج اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب جو ہے یہ رمضان کی رات میں ہوتا ہے، شعبان کی رات میں نہیں ہوتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دن دیے ہیں، مثلا جیسے یوم الحج، حج کا دن، یوم الترویہ ہیں حج کے دنوں سے جو پہلے کے دو دن ہوتے ہیں، پھر یوم النحر ہے قربانی کا دن، لیلۃ القدر ہے ایام 20، یوم الجمعہ ایام تشریق، لیکن شب برات کا لفظ جو ہے یہ ہمیں کہیں نہیں ملتا. شب کا لفظ ہے نا، یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نائٹ، عربی لفظ ہی نہیں ہے یہ. اور برات کا جو لفظ ہے نا، برات اگر اس کو بولیں تو یہ سنسکرت کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے دھولا کی برات. آج ہمارے ہاں شادیوں میں یہ لفظ بولتے ہیں نا، برات آ گئی کہ نہیں آ گئی. اب آپ بتائیے کہ ہمارا دین عرب سے شروع ہوا، عربی رنگ اس پہ غالب ہے، وہ دین کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر آپ لوگ لفظ وہ کہہ رہے ہیں جو عربی زبان میں نہیں آتا. یعنی عربوں کو تو شب کا لفظ نہیں پتا ہوگا نا کہ یہ رات کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ فارسی نہیں جانتے تھے. اسی طرح برات کا لفظ، دولہا کی برات، ان کو نہیں پتا ہوگا. آج بھی ایون جو ہمارے ہاں معروف برات ہے وہ عرب لوگوں کو نہیں پتا ہوتی، کیونکہ ان کے ہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. اور اگر اس کو برات کی بجائے برات کہیں نا، الف پہ حمزہ ڈال دیں جھٹکے کے ساتھ، سورۃ توبہ کا جو دوسرا نام ہے برات من اللہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے بیزار. تو بیزاری کی رات، کس سے بیزاری، کس کی بیزاری، کوئی بھی تو نہیں ہے نا. تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ رات عام رات کی طرح ہے. دوسری پھر مس کنسیپشن کیا ہے کہ اس رات میں اسپیشل نفل پڑھے جاتے ہیں، اور وہ کس قسم کے نفل ہیں؟ بعض دفعہ کئی کئی اس کے اندر صورتیں پڑھی جاتی ہیں، قل ھو اللہ کئی دفعہ پڑھی جاتی ہے، یعنی اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ اس طرح عبادت کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے. تو یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس رات کے لیے جس کو ہم کہیں کہ یہ دین ہے. اب دیکھیں یہ چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے کہ ہم کوئی بھی نیکی کیوں کرتے ہیں، عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے نا، اللہ کی خوشنودی کے لیے. اب اللہ کب خوش ہوگا؟ جب ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں گے نا. مثلا آپ دیکھیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہو جائیں، یا بیویاں چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر ان سے خوش ہو جائیں، تو کس طریقے سے کام کرنے پہ وہ خوش ہوں گے؟ جو ان کو پسند ہے، رائٹ اور رانگ؟ جو کام ہمارے بڑوں کو پسند ہی نہیں، ہمارے ماں باپ کو، یا جس کو انہوں نے کہا ہی نہیں آپ خود ہی کر لیں، وہ کہیں گے تم نے یہ کیوں کیا، میں نے کب کہا تھا تمہیں. کئی بار آپ کو ماں سے ڈانٹ پڑتی ہوگی نا، میں نے کب کہا تھا تمہیں یہ کرنے کو. ہاں तो बिल्कुल इसी तरह याद रखिए कि इबादत के नाम पे कुछ भी करेंगे तो वो उस तरह से करेंगे जैसे करने का हुक्म दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लम पर एक ऐसी आयत उतर चुकी है हज्जतुल विदा के मौके पे, जिसके बाद अब दीन में अपनी मर्ज़ी से कोई नया काम नहीं किया जा सकता। और वो आयत क्या है, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन मैंने तुम पर अपना दीन पूरा कर दिया और तुम पे अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद कर लिया। अब दीन मुकम्मल है, इसमें कोई चेंज करेंगे ना तो वो कमी बेशी जो है वो उसको नुकसान देगी फ़ायदा देने की बजाय। इसलिए इस चीज़ को इंसान जहन में रखे, नेकी के नाम पे आप कोई भी काम करेंगे तो पहले चेक कीजिए कि वाकई अल्लाह और उसके रसूल ने किया कि नहीं किया। फिर एक तीसरी मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि इस रात अल्लाह सुबहाना ताला पहली रात पे यानी इस रात अल्लाह ताला पहले आसमान पे आते हैं और ये माफियों की रात है। तो आप देखिए कि ऐसा तो हर रात होता है, ये सिर्फ 15 शाबान के साथ हम क्यों जोड़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि हर रात जब तीसरा हिस्सा शुरू हो जाता है यानी 2/3 गुजर जाता है और आखिरी तहाईर आती है तो अल्लाह सुबहाना ताला आसमान दुनिया पे नज़ुल फरमाते हैं और फिर आवाज़ लगाते हैं, कोई है जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे मैं उसको माफ़ कर दूँ, कोई है जो बीमारियों से सेहत मांगे मैं उसको सेहत दे दूं, कोई है जो रिस्क की तंगी का शिकार है मैं उसको रिस्क दे दूं। लेकिन लोग तो सो रहे होते हैं, हम लोग उसी वक्त तो हमारी आंख लगती है, तो क्या इसको सिर्फ एक रात के साथ रखेंगे? ऐसी बात नहीं है, कोई काम करें हमेशा करें। अल्लाह के नबी सल्लम से पूछा गया कि अल्लाह को सबसे ज्यादा अमल कौन सा पसंद है लोगों का, तो फरमाया कि अहब्बुल आमाल इलल्लाही अदवमुहा व इन कल्ला, अल्लाह को सबसे ज़्यादा वो अमल प्यारा लगता है जो इंसान हमेशा करे, कंसिस्ट हो, दवाम के साथ करे, मुस्तकिल मिजाजी से करे, चाहे वो छोटा सा ही हो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो के कदमों की चाप नबी सल्लम ने जन्नत में सुनी। बाद में पूछा कि बिलाल आप क्या नेकी करते हैं? कहा कुछ नहीं, बस जब वुज़ू करता हूँ ना तो 2 नफिल पढ़ लेता हूँ। कहा बस तेरे ये 2 नफिल तुझे जन्नत में ले जाएंगे, छोटा सा काम हमेशा करने वाला। अब आप एक रात पूरी रात जाग लेते हैं और उसके बाद फिर आप बाकी वक्तों में फ़र्ज़ नमाज भी ना पढ़ें तो क्या होगा, दुरुस्त नहीं है ना। इसलिए इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है कि चंद रातें ख़ास तौर पे शॉर्टकट्स के साथ इबादत की जाए। उससे बेहतर यह है कि इबादत को उसी तरह किया जाए जैसे अल्लाह के नबी ने कहा, जैसे आपने किया और जिस तरह आपने करने का हुक्म दिया। फिर एक चौथी गलतफहमी क्या है कि इस रात में तकदीर के और किस्मत के अगले साल के फैसले होते हैं, इस पे हम बात कर चुके थोड़ी सी पीछे भी कि ऐसी बात नहीं है, ऐसे सारे मामले जो हैं ये लैलतुल कदर की रात में होते हैं। फिर पाँचवीं मिसकंसेप्शन क्या है कि इस दिन रोज़ा रखना चाहिए। बहुत सारे लोग 15 शाबान को रोज़ा रखते हैं और उसमें भी यही सोच रखते हैं कि इस रात के रोज़े का कुछ ज़्यादा अजर है। तो आप देखिए कि अल्लाह के नबी का अगर हम अमल देखें तो आप हर महीने की 13, 14 और 15, 13, 14 एंड 15, 14 क्या है फुल मून और 13 उससे एक दिन पहले और एक उसके बाद, आप इन 3 दिनों में रोज़ा रखते थे। इसको याम-ए-20 के रोज़े कहते हैं, 20 कहते हैं चमक को, रोशनी को, कि इन दिनों रातें बहुत रोशन होती हैं ना। तो अल्लाह के नबी नफिल पढ़ रखते थे, आप भी रखिए, पढ़िए, आप भी रोज़ा रखिए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन सिर्फ इसको 15 शाबान का सोच के और उसका कोई ख़ास अजर सोच कर ये नहीं करना चाहिए, आप 15 शाबान को रखें, 13 को भी रखें, 14 को भी रखें। फिर इसी के साथ आप जब आगे रजब का पीछे महीना गुजरा था आपको उसकी भी 13, 14, 15 को रखना चाहिए। अच्छी बात है रोज़ा रखें, लेकिन फिर सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि दूसरे दिनों के साथ मिला के रखिए। हर पूरे साल की 13, 14, 15 को रोज़ा रखना चाहिए और इससे इंशाल्लाह ताला इंसान अपने फ़र्ज़ जो रोज़े छुट्टे में उनको भी पूरा कर सकता है और अल्लाह ताला की तरफ से ज़्यादा अजर भी मिलने वाला होगा। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लम मंडे और थर्सडे को रोज़ा रखते थे, पीर और जुमेरात को। इन दिनों में भी आता है कि आमाल अल्लाह ताला के पास जाते हैं, तो इस तरह के सुन्नत काम किए जा सकते हैं जिससे इंसान अजर पाएगा। फिर इसी तरह एक और गलतफहमी जो इस महीने के अंदर है वो क्या है कि ये वो रात है जिस दिन रूहें जो हैं वो अपने घर वालों को मिलने के लिए वापस आती हैं। शायद आपने सुना होगा कि इस रात रूहें आती हैं और लोग उनकी पसंद के खाने वगैरह पकाते हैं और फिर वो रूहों के लिए खिलाते हैं। आप ज़रा सोचिए कि जो चला गया اب واپس آئے گا. سورة المومنون میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اور ان کے بعد تو اب ایک پردہ ہے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک کا. آپ سوچئے مردوں کو آپ کہتے ہیں آ رہے ہیں, اور بعض لوگ تو پھر اس میں مردوں کی عید کا بھی کانسیپٹ رکھتے ہیں نا. بعض لوگ شعبان سے پہلے مرنے والے کے لیے حلوہ پوری پکا کر ختم دلاتے ہیں, پھر خاندان کا کوئی رسم شروع کرتے ہیں. جیسے کوئی مر جاتا ہے نا خاندان میں, تو وہ کہتے ہیں اب ہم کوئی خوشی نہیں کریں گے, ہم نکاح نہیں کریں گے, منگنی نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارے خاندان میں ایسے ہو چکے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں جب شعبان آتا ہے تو اس سے پہلے حلوہ پوری پکا کے لوگوں میں بانٹتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ اب ہم اس غم سے نکل گئے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ سراسر ہندوؤں کا کلچر ہے, وہ ایسا کرتے تھے. جب کوئی ان کا مر جاتا ہے نا تو ان کے خیال میں اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے, اور وہ اس کی پسند کی چیزوں کو منگا کے کھلاتے, پھر کہتے ہیں کہ اب یہ مردہ اوپر چلا گیا. تو آپ بتائیے جن کا کوئی ہے ہی نہیں, ان کے مردے کیا لٹک رہے ہیں؟ ہاں, پھر ذات پات برادری ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جس مردے کی فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ آسمان زمین میں لٹکتا رہتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. بعض لوگ گھروں میں خاص کونے میں گھر صاف کر کے حلوہ پوری رکھ دیتے ہیں, بتیاں چلا دیں, اگر بتیاں خوشبو, اور ان کا خیال ہے کہ روح آتی رہے گی ادھر, اور 40 دن تک کئی کرتے ہیں کہ ان کا خیال ہے ہر روز روح آتی ہے اور کھائے گی, اور کھا کے بیچاری پھر نہیں جاتی, کھا خود ہی لیتے ہیں. یعنی یہ کیسی سے آتی ہے کہ مردے کی روح کو بلائیں, پھر حسرت سے اس کو دکھائیں اور کھا خود لیں. یعنی مہمان گھر میں آئے اور آپ اس کو بھوکا بھیج دیں اور کھانا خود کھا لیں, کیا یہ درست ہوگا؟ نہیں. قرآن پاک میں روح کا آنا جو ہے یہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, اور یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور ہے نا کہ روحیں بھٹکتی رہتی ہیں اور اگر انتقام نہ لیں دشمن سے تو وہ معاف نہیں کرتی, یہ سب ہندوانہ کلچر ہے. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا, آپ کے چچا حمزہ کا انتقال ہوا, مصعب بن عمیر جن سے آپ کو اتنی محبت تھی وہ فوت ہوئے, کسی کی روح نہ آئی بدلہ لینے کے لیے کہ ہمیں فلاں نے مارا ہے ہم وہ کریں, اور وہ تو اس دنیا سے نکل کے دوسری دنیا میں جاتے ہیں. کیا ان کو یہاں آنے کی ضرورت ہے؟ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص نیک ہے, دنیا میں اچھی زندگی بسر کرتا ہے, تو ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اس کی روح جو وہ علیین میں چلی جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں اس کی قبر میں, وہ بالکل نعمتوں میں. کیا وہ وہاں کی نعمتیں چھوڑ کے دنیا میں آپ کا حلوہ کھانے آئیں گے کولیسٹرول سے بھرا ہوا؟ ہاں, اور اگر بالفرض خدا نخواستہ مرنے والا جہنم میں جا چکا ہے تو کیا فرشتے اس کو آنے دیں گے؟ کوئی قیدیوں کو جانے دیتا ہے جو آج چھٹی کے منا کے آ جاؤ گھر سے واپس آ جانا؟ یہ صرف ہماری بات ہے, یہ دنیا ہماری یہاں کی ہے وہ وہاں کی ہے. ہم صرف کھانے پینے سے خوش ہوتے ہیں نا, تو ہمارے ہاں ہر چیز میں کھانا پینا آ جاتا ہے, اور پھر اس طرح کی باتیں کر کرا کے ہم اس رات کو یہ تصور رکھ کے نئے نئے کھانے پکاتے ہیں کہ مردے کھائیں گے. پھر اسی طرح ایک اور اس بارے میں غلط فہمی کیا ہے کہ لوگ اسپیشلی اس رات قبرستان میں جاتے ہیں اور یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ یہاں جا کے تو ہم ان کے مردوں کی عید میں شامل ہوں گے. اور بعض جگہ تو دیکھا گیا کہ قبرستانوں میں لائٹنگ ہوتی ہے, بتیاں لگتی ہیں اور عرس منائے جاتے ہیں اور کچھ اور چیزیں. آپ ذرا سوچئے یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایسی تھی کہ جس دن آپ فوت ہوئے تو حضرت عائشہ فرماتی کہ اس دن جو چراغ جل رہا تھا نا اس میں جو تیل تھا وہ بھی ہم نے کسی سے بورو کیا تھا, ادھار لیا تھا, اتنے اندھیرے میں تھے. آپ کی زندگی میں تو مسجد نبوی میں کہیں کچھ راغا نہیں ہوا. آج بھی دیکھیے الحمدللہ دنیا کی یہی دو بڑی مسجدیں ہیں, بیت اللہ اور مسجد نبوی, دونوں میں کسی ایسے موقع پہ آپ کو کوئی چراغا نہیں دیکھے گا. ہمارے ہاں عام بات ہے کہ مسجدوں کے اندر لائٹیں لگائی جاتی ہیں, ساری رات روشنائیاں ہیں اور بڑے بڑے یعنی فنکشنز رکھے جاتے ہیں, ساری ساری رات لوگ جاگ کے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ کیسے یہ دین ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو ایسا کام کیا ہی نہیں ہے, اور وہ شہر جہاں آدھی فیکٹریاں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بند ہو, کیا وہاں کے لوگوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بجلی اتنی ضائع کریں؟ پھر ایک اور اس میں غلط چیز یہ ہے, وہ کہہ کہ اس رات لوگ آتش بازی کرتے ہیں, آگ کے ساتھ کھیلتے ہیں, یعنی شرلیاں اور پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں. آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہندو کلچر سے آئیں, ان کے اندر دیوالی کے موقع پہ ایسا ہوتا ہے, بڑے بڑے انار پھوڑنا اور جیسے فائر ورکس کہتے ہیں جس کو, تو یہ مسلمان بھی اس کو اس رات پہ کرتے ہیں. آگ سے کھیلنا کس کا کام ہے؟ کون بنا تھا آگ سے؟ شیطان بنا تھا. تو جب ہم شیطان کی والی آگ سے کھیلنے لگیں گے تو آپ سوچیے کہ کیا نعوذ باللہ کل جہنم میں بھی جا کے پھر آگ سے کھیلنا رہیں گے؟ अपने खून पसीने की कमाई को इस तरीके से एक्साइटमेंट के नाम पे आग लगाना, ये इस्लाम के मिजाज से मेल नहीं खाता। और ख़ास तौर पे आप देखिए कि इसको ईद समझना, ये कहाँ की ईद है? ईद तो दो ही हैं इस्लाम में। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत करके आए तो आपने लोगों को एक दिन बड़े अच्छे कपड़े पहने देखा, कहा ये क्या है? कहने लगे कि दौरे जाहिलियत में हम इस दिन ईद मनाते थे। तो आपने फ़ौरन खुतबा दिया, आपने कहा कि इस्लाम में अब दो ईदें हैं, ईद उल फितर जो किस चीज़ की खुशी है कि आपने रमज़ान के 30 रोज़े रख लिए या 29 रखे, तो उसके इनाम में अल्लाह ताला आपको उस दिन खुश होना चाहते खुश रहो, अच्छे कपड़े पहनो, खाओ पियो, फिर भी नमाज़ पढ़ो ईद की, कि ईद की खुशी में भी नाराज़ नहीं करना अल्लाह को। और इसी तरह दूसरी ईद उल अदहा, और वो किस चीज़ का इजहार है? हाजियों के लिए जो इतनी दूर गए, अपने गुनाह माफ़ कराए। और इसी तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत कि किस तरह उन्होंने बेटे की गर्दन पे छुरी चला दी, तुम भी रखो। इसके अलावा इस्लाम में कोई और ईदें नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि ये फ़रिश्तों की ईद है, शबे बरात और लैलतुल कदर, ये भी मन घड़त रिवायत है। इस तरह आप देखिए कि जो लोग इस तरह की बातें करके अपने आप को खुश कर लेते हैं ना, उसका एक नुकसान होता है कि एक रात आपने खूब मना ली, सेलिब्रेट कर ली, फिर आप मुतमईन हैं, चलें अब कोई और लंबी रात आएगी तो देखेंगे। बाज़ लोग इसको बड़ी रात कहते हैं, हालांकि उतनी होती है जितनी आम रातें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हुए ज़रूर इंसान एक दफ़ा सोचे कि क्या वाकई मैं जो काम कर रहा हूँ इसकी कोई सुन्नत है। आप कल्चर के नाम पे करें, करते रहिए, जैसे आप पाकिस्तान डे मनाते हैं, जैसे आप 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल की पैदाइश मनाते हैं, आप मनाते रहिए, आपकी मर्ज़ी। लेकिन जहाँ आप किसी चीज़ को दीन कहेंगे, तो दीन तो दलील का नाम है, जब तक सनत नहीं होगी तब तक उसको आप नहीं मना सकते, कर नहीं सकते। फिर इसी तरह एक और मिसकॉन्सेप्शन इसके अंदर क्या है कि बास लोग इस रात को ये तसव्वुर करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम जो थे वो जन्नतुल बकी में गए, और इसके पीछे वो रिवायत है कि हज़रत आयशा के पास थे अल्लाह के नबी सल्लम, तो उन्होंने आपको देखा कि आप वहाँ नहीं हैं, बिस्तर पे नहीं थे, तो इनको शक आया कि पता नहीं मुझे छोड़ के कहाँ चले गए। तो हज़रत आयशा चुपके चुपके उठी तो नबी सल्लम का साया देखती हुई पीछे पीछे चलने लगी। कहती हैं कि जब मैं एक जगह जाके रुकी तो देखा कि अल्लाह के नबी सल्लम बकी के कब्रिस्तान में थे और बहुत रो रहे थे, और वहाँ आपको मैंने जब रोता देखा मुझे यकीन आ गया कि आप इधर ही हैं। तो जब आप वापस पलटने लगे तो मैं जल्दी जल्दी भागती हुई आई कि कहीं आपको पता ना चल जाए कि मैं आपके पीछे हूँ। कहती मैं जल्दी जल्दी भागती हुई घर में आई और बिस्तर पे ऐसे लेट गई कि जैसे मैं सो रही हूँ, यानी सोती भी बन गई जैसे पोज किया ना। तो नबी सल्लम जब वापस आए तो वो पहचान गए, कहा कि आयशा तुम्हारा सांस क्यों फूला हुआ है, तो अब झूठ तो ना बोल सकी। कहा अल्लाह के नबी बस ऐसे ही मैं वो आपको देखने के लिए निकल गई थी। कहा अच्छा वो जो साया जा रहा था वो तेरा साया था? कहा जी अल्लाह के नबी। तो कहा कि आयशा क्या तू ये समझती है कि मैं तेरे बारे में ख़यानत करूँगा, यानी तुझे छोड़ के मैं जो है दूसरी बीवी के पास चला जाऊँगा, यानी ये शक था ना। अब ये वाक्य सही वाक्य है, लेकिन बाज़ लोग इसको कहते हैं कि उस रात 15 शाबान की रात थी, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लम कब्रिस्तान में गए और बकी के अंदर आपने नमाज़ पढ़ी। तो पहली बात तो आप देखिए कि अल्लाह के नबी का तो ये मामूल था, बहुत थोड़े लोग ये बात जानते होंगे कि अल्लाह के नबी को चूँकि हज़रत आयशा से बड़ी मोहब्बत थी ना, तो जिस रात आपकी बारी होती थी उस रात आप ज़्यादा कसरत से फिर थोड़ा ज़्यादा वक्त निकाल के इबादत करते थे, ये सोच के कि कहीं मेरा दिल इस बीवी की मोहब्बत में इतना गाफिल ना हो जाए कि मैं अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो जाऊँ। ये तो हर रात होता था कि 15 शाबान अगर ऐसा हो भी गया तो क्या बड़ी बात हो गई, इसमें कोई बुरी बात नहीं थी, आप ये मामूल के मुताबिक करते थे। बाकी रह गई बात, आप देखिए कि जो सूरत दुहान की इब्तदाई आयात में इस आयत को पेश किया जाता है कि इस रात कुरान नाजिल हुआ और आप इबादत के लिए गए, तो ये आयत तो मक्का में नाजिल हुई थी और वाकया मेराज से पहले नाजिल हुई, ना उस वक्त नमाज फ़र्ज थी और ना बकी नाम का कोई कब्रिस्तान था, फिर कैसे आप रात को जागते और कब्रिस्तान में जाते हैं? तो असल बात यह कि जब बेसलेस नॉलेज आम हो जाता है ना, सुनी सुनाई बातें, बड़ों की बातें, कही हुई बातें दूसरों की, तो फिर यही हाल है। आज अभी तो हमने ये चीज़ देख ली कि हमारे इल्म के साथ तो इतना ताल्लुक कमज़ोर है कि हम इन बातों को जानते ही नहीं हैं जो बहुत बेसिक्स हैं। तो सिर्फ वो बातें करना कि जो दूसरों से करते हुए देखा, जो उनको सुनते हुए देखा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा फितना बन सकती हैं। फिर एक और गलत फहमी और वो क्या है कि जब इतने लोग कर रहे हैं तो वो गलत कैसे होंगे? हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि जी क्या सारे गलत हैं? इतने साल से हमारे बाप दादा ये काम करते आए थे, तो क्या ये गलत काम होगा और क्या इसको हम नहीं देख सकते? तो आप देखिए कि कभी ये हो सकता है कि कोई बात अगर सारे लोग कर रहे हैं तो वो ठीक हो जाए। मिसाल देखिए कि आज के दिन दौर में आप देखिए बहुत सारे लोगों को शराब पीता देखते हैं, तो आप किसी भी शराब खाने या नाइट क्लब में देखें इतने पी रहे हैं, तो आप कहें अब इतने पी रहे हैं तो ये गलत थोड़ी होगी। बहुत सारी औरतों को आप देखते हैं कि गंदे लिबास पहन के फिरती हैं, तो आपके देखें ना अब सारी गंदे कपड़े पहनती हैं तो फिर ये अच्छी बात ही होगी ना। ये हमारा दीन जो ना ये मेजोरिटीज अथॉरिटी को नहीं मानता कि जो सब करने लगे वही काम अच्छा है। असल ये कि जिस चीज़ की दलील है उसको मान लेंगे और जिस चीज़ की दलील नहीं है उसको नहीं मानना, चाहे सारी दुनिया उस काम को करने लगे और चाहे कोई भी उस काम को ना करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस तरह की बातें पूछी जाती थी कि आप देखें कि फलां ये काम करता है, ऐसे करता है, क्या करता है, तो कुरान पाक की आयत का हवाला दे के सूरह निसा की आयत नंबर 59 में आता है कि अगर तुम लोगों को ऐसे गलत काम करते देखो तो तुम वहाँ से उठ जाओ, ये दुरुस्त चीज़ नहीं है। तो बिल्कुल आज चूँकि 15 शाबान के नाम से शबे बरात का लफ्ज़ हमारे कल्चर में बहुत मशहूर हो गया ना, इसकी वजह से बास लोग इस पे बात सुनते ही एकदम परेशान होते हैं, ये कैसे हो सकता है, फिर हम दूसरों को कैसे बताएं, क्या करें, कैसे होगा। तो कोई बात नहीं, कल तक नहीं पता था, आज पता चल गया, इस वक्त हमें सही चीज़ पता चल गई है ना, तो हम उसको मान लें। बाकी रह गई बात जो हम करते हैं इस पूरे महीने में, अगर इबादत के नाम पे, या एक और भी इसके बारे में बहुत ही गलत फहमी, और वो क्या है कि इसको लोग बिल्कुल ही ईद की तरह मनाते हैं। कुछ घरानों में तो इस तरह से होता है कि जैसे ईद जाती है ईदी के तौर पे, जैसे बच्चों के रिश्ते में बेटियों की ईद जाती बहुओं के लिए या दामादों के लिए, अब लोग शबे बराते भेजते हैं, शब रात आई है, बाज़ लोग हलवे मांडे पका के भेजते हैं, कभी पूरियाँ भेजते हैं, बाज़ लोग फिर इस मौके पर जमा होकर इस तरह के काम करते हैं कि जिसको सिर्फ फ़न फ़न फ़न। मुझे ऐसे लगता है कि संजीदा दीन लोगों को अच्छा नहीं लगता, जिसमें दलील हो, जिसमें बैठें सीखें, आप कुरान पढ़ें आपको खुद ही पता चल जाएगा, हदीस सीखें हदीस पढ़ें आपको हर बात दूध का दूध पानी का पानी दिखेगा। लोग इस चीज़ से लोगों को दूर रखते हैं, वो कहते हैं बस तुम आते रहो मस्जिदों की रौनक बनती रहे और आओ और ये खाओ खिलाओ पियो, तुम भी खाओ हम भी खाते हैं, और इस तरह कुछ काम करके अपने आप को हम समझ लेते हैं कि नेक हो गए। देखिए जब तक अल्लाह के नबी की सुन्नतों पे हम नहीं जमेंगे ना तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो सहाबे कराम की इतनी मोहब्बत थी कि वो काम करते ही नहीं थे जो आपने नहीं किया। एक दफ़ा आपके एक सहाबी थे तो किसी सफ़र में आपके साथ थे, तो जब वहाँ से दूर से आप आ रहे थे तो बांसुरी की आवाज़ है, यानी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा, अपने कानों में उंगलियाँ पहले दी, फिर उन्हें कहा कि देखो जब ये आवाज़ आनी बंद होगी तो मुझे बता देना। जब दूर गए आवाज़ आनी बंद हुई तो अब अब्दुल्ला बिन उमर ने बता दिया, तो अल्लाह के नबी ने कानों से उंगलियाँ निकाली। अब अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद एक दफ़ा अब्दुल्ला बिन उमर वही सहाबी अपने ग़ुलाम नाफ़े के साथ कहीं से गुजरे तो वहाँ से बांसुरी की आवाज़ आ रही थी, तो इन्होंने वही काम किया जो अल्लाह के नबी ने किया था, अपने कानों में उंगलियां दी और कहा कि मैं इस आवाज़ को नहीं सुनना चाहता क्योंकि अल्लाह के नबी ने नहीं सुना था, मैं भी नहीं सुनता, और जब आवाज़ आनी बंद हुई तो फिर आवाज़ उंगलियां कानों से निकाली। मोहब्बत तो ये होती है ना, अमल की मोहब्बत होनी चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी का दान चूके टूटा था तो इस दिन आपने वहाँ पर ये चीज़ें खाई थी, हलवा खाया था इसलिए हम हलवा बनाते हैं। हालांकि आप देखिए कि जिन लोगों ने थोड़ी सी भी सीरत पढ़ी है उनको पता है कि जंगे ओहद तो शवाल के महीने में हुई थी और हलवा आप शाबान में पका रहे हैं। ये सब बातें देखी भाली हैं, इसके ऊपर जितना गौर करेंगे इंशाल्लाह उतना ही हमें ये बात बिल्कुल वाज़े होकर समझ आ जाएगी कि जब लोग 5 वक्त की नमाज के आदी नहीं रहते ना, फ़राइज़ को नहीं अदा करते, तो फिर उसके बाद उनका दिल होता है कि अब कुछ तो करें ना, कुछ तो कुछ शॉर्टकट, कोई कमी बेशी ताकि हम नेक बन जाएं, तो उसके नतीजे में फिर इस किस्म की चीज़ें आती हैं। फिर एक और भी इस नाते से हमने देखी जो लोग गलतफहमी का शिकार है, अब मैं गलतफहमी कह रही हूँ, इसको आप बिदत कह लें, आप कुछ भी कह लें, लेकिन ये वो काम है जो अल्लाह के नबी से साबित नहीं थे। और वो क्या है आखिरी कि शाबान की जो आखिरी तारीखें होती हैं ना, तो इस्तकबाले रमज़ान के लिए रोज़ा रखते हैं कि जी रमज़ान आ रहा है तो वेलकम रमज़ान के नाम पे, जैसे शाबान की 30 या 29 तारीख को रोज़ा रखें, ये भी सुन्नत से साबित नहीं है। हम सबको करना क्या है, हमने बात तो सुन ली, अपना मुहासबा करना है फर्स्ट थिंग। दूसरी बात है कि अगर इन सारी बातों को सुनते वक्त हमने सोचा कि क्यों हम ये मौजू सुन रहे हैं, तो आप सोचिए कि रमज़ान के बाद वो दूसरा महीना जिसमें अल्लाह के नबी सल्लम इतनी कसरत से इबादत करते थे, हम कैसे मुसलमान हैं कि हमें इसके बारे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। लोग कुछ भी करें, कुछ भी सुने, और हम कहते हैं कि ठीक है जी करने दो, हम किसी को क्या मना करें। नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आज उसने हमें एक महीने के बारे में सही चीज़ें जो थी हमें पता चली। इसी तरह बल्कि दिल में ख्वाहिश रखनी चाहिए कि हम बाकी 11 महीनों की भी बातें सुनें, उसके बारे में देखें कि अच्छा रजब में क्या हुआ था, मुहर्रम में क्या हुआ था, सफ़र में क्या हुआ था। हम कैसे अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं अगर हमने अपने दीन की बेसिक चीज़ों को ही नहीं देखा। तो बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर अपने दिल को खुला रखिए, रोज़े रखिए। आप 15 शाबान को रोज़ा रखें, फिर 13 को भी रखें, 14 को भी रखें। आप 15 शाबान को जागें रात को, लेकिन फिर आप हर रात को कुछ तो जागें। एक वक्त को नियत करके आप जागें और बाद में इबादत भी ना करें। एक दफ़ा एक औरत नबी सल्लम के पास आई तो आपने कहा कि तुम्हारा बेटा आज फजर की नमाज़ में क्यों नहीं आया। कहा अल्लाह के नबी वो सारी रात इबादत करता रहा और जब फजर का वक्त आया तो उसकी आँख लग गई। तो आपने फरमाया कि ना उसको उसकी उस इबादत का सवाब मिला और ना उसकी फजर का उसको सवाब मिला। ये जो पूरी रात की इबादत है ना, शबीना जिसको कहते हैं, या इस तरह पूरी नाइट जागना, ये भी सुन्नत से साबित नहीं है, क्योंकि ये इंसान के बस में ही नहीं है। अगर आप पूरी रात जागेंगे ना, तो फिर मान जाएं कि आप पूरा दिन अगले दिन ऐसे बोझल और फिरेंगे कि आप नमाज़ें भी सही तरह नहीं पढ़ेंगे। और अगर कोई रात पूरी जागे, और जैसे आज अमूमन रातें नॉर्मल लंबी होती हैं, तो फजर से पहले ज़रूर ही नींद आ जाती है। एक तो एक्सेप्शनल केस है ना, जैसे नॉर्वे में होते हैं आधी रात है, 2-2.5 घंटे की रात है, ये एक अलग बात है कि आप इस डर से ना सोएं कि फजर ना निकल जाए और उसका वक्त अच्छा इस्तेमाल करें, ये एक और बात है। लेकिन अगर आप मिसाल है कि 10-12 घंटे की रात है और कोई कहे कि इशा की नमाज़ के बाद मैं मुसल्ले पर खड़ी हुई और फजर तक नमाज ही पढ़ती रहूँ, नफिल पढ़ती रहूँ, कुरान पढ़ती रहूँ, ये सुन्नत से साबित नहीं। हमारा दीन बहुत नेचुरल दीन है, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों के लिए गाइड करता है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमें इस महीने की सही कदर करने की तौफीक दे, रोज़े रखें, अपने आप को तैयार करें। हम सारे ये असल में हमारे प्रेपरेशन टू रमज़ान का पहला स्टेप था कि हम पहले इस महीने में अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करें और इस महीने में थोड़े रोज़े रखिए। जिन सिस्टर्स के रोज़े छुटे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऐसे भी बहुत दिन है, शाबान का पूरा महीना होता है, आप इसमें रोज़े रख लें। अल्टरनेट डेज़ पे रख लें, पीर और जुमेरात को रख लें, 13, 14, 15 को रख लें। ये शुरू के जो दिन होते हैं ना महीने के, इनमें ज़्यादा रखने चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आखिर में रखें तो फिर कमज़ोरी इतनी हो जाए कि फ़र्ज रोज़े ना रख सकें। मुसलसल नहीं रखें, ये भी एक गलत फहमी है कि क्या हम पूरा शाबान का महीना रोज़े रखें। इस पर बहुत ज़्यादा बहसें हैं उलमा के बीच में, 2 मुख्तलिफ रिवायात सामने रख के वो बात करते हैं। ख़ुलासा सबका ये है कि अल्लाह के नबी कसरत से रखते थे, लेकिन मुकम्मल नहीं रखेंगे। तो हमने इंशाल्लाह अभी से ये नियत करनी है और जहन को तैयार करें। मुझे तो लगता है कि शाबान का में करने वाला काम जो है ना, वो ये है कि ख़ुद भी इसके लिए तैयार हों कि मैंने इस साल बहुत अच्छा रमज़ान गुजारना है, और साथियों को तैयार करें, अपनी दोस्तों को, अपनी फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को, कि देखना इस साल हमने रमज़ान में बहुत अच्छे काम करने हैं, हमने इस साल रमज़ान की नियत करनी है, कोई गलत काम नहीं करना, कोई नमाज़ नहीं छोड़नी, जमात से पढ़ने की कोशिश करनी है, मैंने कुरान पाक पूरा एक दफ़ा कम अज़ कम सीखना है, समझना है। इस तरह की नियतें करें, फिर आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए बहुत सारे काम आसान होंगे। कोई सवाल अगर इस बारे में आपके ज़हन में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सूरह निसा की आयत में ने ये बताई थी कि 2 मुख्तलिफ जगह पे आता है कि जब भी कम भी तुम लोगों को देखो कि वो गलत काम कर रहे हैं तो उस महफिल से उठ जाओ। यानी हम ये सोच के करें कि अब मेरे तो ख़ानदान वाले कर रहे हैं, मेरी तो चची करती हैं, मेरी तो खाला करती हैं, मेरी तो दादी करती हैं, नानी करती हैं, मैं क्या करूँ। नहीं, पहले आप ख़ुद समझें, आपको ये बात समझ आ गई है, फिर उसके बाद दूसरों को भी आप रोक सकते हैं। एक सवाल ये उठ सकता है जहन में, अक्सर ये एक सवाल होता है कि जी अच्छा कोई हमारे घर में ऐसा भेजता है हलवा पूरी बना के स्पेशल इस दिन इस ओकेजन पे, तो क्या हम उसके बारे में करें, खाएंगे ना खाएं? क्योंकि अब तो असल में वो कम्युनिकेशन ही कम हो गया है ना। पहले दौर में जब लोग मोहल्लों में रहते थे, साथ साथ घर थे, तो फिर हलवे भी बटते थे, चावल मीठे पकते थे। तो आप देखिए कि अच्छे तरीके से उनको भी बताएं कि ये आज क्यों पका है। बस लोग दिल में नियत की होती है, उन्होंने किसी इमाम के नाम की नियाज है, कोई कुछ है, तो अगर मेरा ख्याल है कि आज के दौर में कोई सोच से नहीं भी करता तो उनको पहले से बताएं कि आज ही आपने क्यों पकाया, किसी और दिन क्यों नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन तशब्बह बि कौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की को रिजेंबल करेगा ना, कॉपी करेगा, क़यामत के दिन वो उन्हीं में से उठाया जाएगा। तो अगर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम हिंदुओं की देखा देखी करते हैं तो अल्लाह ना करे कि फिर हम उनके साथ पकड़े जाएँ। जी आप, ये बच्ची हैं छोटी सी, तो इनका सवाल है कि क्या फिर हम नात सुन सकते हैं जबकि उसमें म्यूज़िक होता है, यही पूछे ना आपने। तो आप देखिए कि नात सुन सकते हैं लेकिन अगर उसमें म्यूज़िक है तो फिर तो नहीं सुन सकते ना। और फिर नात अब कोई भी सुने कभी भी, तो उसमें ये देख लें कि कोई ऐसी बात तो नहीं की गई कि जो यानी शिर्क की तरफ चली जाती है या एग्जेजुरेशन होता है। आप अभी बहुत छोटी हैं, आपको भी ये बात समझ नहीं आएगी। तो जब भी कोई नात सुननी हो तो या सुने तो उसके जो वर्ड्स हैं वो चेक करवा लें अपनी अम्मी से या किसी से कि देखें इसमें कोई शिर्क वाली बात तो नहीं है ना। और यानी आखिर में अगर फिर दो चार लफ्ज़ों में कह दूँ कि अब यहाँ से उठने के बाद आपने क्या करना है, पहले तो अपना काउंट करें मेरे कितने रोज़े रहते हैं। बिलफर्ज़ पिछले रमज़ान के आपके 5 या 6 रोज़े छुटे हुए थे, पूरे किए हैं कि नहीं किए, तब उसको पूरे करें। फिर जैसे आप यंग बच्चियां हैं अगर, तो आप अपनी मदर्स को भी ये बात कन्वे कर सकते हैं कि मम्मी अगर आपके कोई रोज़े छुटे हुए हैं तो आप उसको पूरे कर लें, ठीक है। फिर वैसे भी नफिल रोज़े आप रख सकते हैं, पिछली ज़िंदगी में कोई फ़र्ज़ छुटे हुए हैं इस नीयत से रख लें कि अल्लाह ताला मुझे नहीं याद अगर जब मैंने किए पूरे लेकिन कोई रह गया तो आप अपनी रहमत से इसको मेरे लिए पूरा कर दें। और दूसरा चीज़ आपने इस महीने के नाते से क्या करनी है कि अब हर दिन अपने आप को ज़हनी तौर पर रमज़ान के लिए तैयार करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين